नन्हे कणों पर पागलपन सवार था। खुद आइंस्टाइन कभी क्वांटम फिजिक्स को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन वह इसका खंडन करने में भी कामयाब नहीं हुए। इस सिद्धांत के एक प्रमुख वैज्ञानिक नील्स बोर का कहना था, क्वांटम फिजिक्स से जिसे सदमा नहीं लगा वह इसे समझा ही नहीं। संजय खाती की रिपोर्ट। रिलेटिविटी का सिद्धांत संकेत देता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट से हुआ था। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि यह घटना आज से करीब 15 अरब साल पहले हुई होगी। कल्पना कीजिए कि उस समय कोई परग्रही प्राणी इस घटना को देख रहा हो। कल्पना कीजिए कि उसके पास चौथाई पौन कार्बन भी हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हर एक क्षण बीतने पर वह कार्बन के इस ढेर से एक एक परमाणु निकालकर फेंकता जाए तो 15 अरब साल बाद यानी आज स्थिति क्या होगी। वह कार्बन के ढेर का सिर्फ 10 लाखवां हिस्सा खत्म कर पाया होगा। इस कल्पना का मकसद यह एहसास दिलाना है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु जिन परमाणुओं से बनी है वे किस कदर सूक्ष्म है, लेकिन परमाणु पदार्थ की अंतिम अविभाज्य इकाई नहीं है, वे और भी छोटे कणों के योग हैं। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से बनता है और उसके इर्द गिर्द उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन। अगर हम नाभिक का आकार आल्पीन के शीर्ष जितना बना दें तो इलेक्ट्रॉन उससे 100 मीटर दूर उसकी परिक्रमा करेंगे। परमाणु के बीच ज्यादातर स्थान शून्य है और इसी पदार्थ तथा शून्य से दुनिया की हर चीज बनती है। परमाणु का यह चित्र ज्यादातर पाठकों को एक चिरपरिचित अवधारणा की याद दिला देगा। वे सहजता से परमाणु की तुलना सौर मंडल से करने लगेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह नाभिक सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी कल्पना में परमाणु गोल गेंदों की तरह नजर आएंगे, लेकिन प्रमात्रा भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स की पहली सलाह यह है कि परमाणु की ऐसी तस्वीर गलत और भ्रामक है। असल में सभी तस्वीरें भ्रामक हैं। आइंस्टाइन ने कभी क्वांटम फिजिक्स को स्वीकार नहीं किया। तो परमाणु क्या है, कैसा है उसका स्वरूप? इस सदी की शुरुआत में इन्हीं सवालों के साथ क्वांटम फिजिक्स ने आकार लेना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस नए सिद्धांत ने मानवीय विचारों में ऐसी क्रांति ला दी कि आज 100 साल बाद भी उन विचारों को स्वीकार कर पाना अजीब लग रहा है। क्वांटम फिजिक्स हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारी सोच को बदल सकती है, वह सभी दर्शनों को उलट देती है, लेकिन इसके बावजूद वह हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम चमत्कारों से भी संपन्न करती है। क्वांटम फिजिक्स की गुमनामी की वजह इसकी विचित्र स्थापनाएं हैं, जो हमारी सहज बुद्धि से कतई मेल नहीं खाती। उसे एक व्यावहारिक दर्शन के रूप में ढालने में एक परेशानी यह है कि यह जितने सवालों का जवाब देती है उससे ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिक्कत इसकी व्याख्या को लेकर है और एक यह कि इसके साथ जुड़े वैज्ञानिकों का वैसा प्रभामंडल नहीं है जैसा आइंस्टाइन का रहा है। खुद आइंस्टाइन कभी क्वांटम फिजिक्स को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन वे इसका खंडन करने में भी कामयाब नहीं हुए। इस सिद्धांत के एक प्रमुख वैज्ञानिक नील्स बोर का कहना था, क्वांटम फिजिक्स से जिसे सदमा नहीं लगा वह इसे समझा ही नहीं। हिगिंस का प्रकाश सिद्धांत। क्वांटम फिजिक्स अणु और परमाणुओं के व्यवहार को जानने की विधि है। इसमें उतरने से पहले हमें प्रकाश के व्यवहार को समझना पड़ेगा और कुछ पीछे से बात शुरू करनी पड़ेगी। न्यूटन के मैकेनिक्स में प्रकाश किरणें सूक्ष्म कणों की धाराएं थीं। न्यूटन ने प्रकाश को कण मानते हुए अपना प्रकाश सिद्धांत पेश किया। उसी समय डच भौतिक शास्त्री क्रिश्चियन हिगिंस ने अपना प्रकाश सिद्धांत पेश किया, जिसमें कहा गया था कि प्रकाश कणों की धारा नहीं एक तरंग है। अलबत्ता न्यूटन का कण सिद्धांत ही विज्ञान पर हावी रहा। चूंकि प्रकाश किसी सतह या दर्पण से टकराकर दिशा बदल लेता था, इसलिए उसे कणों की धारा समझना ही स्वाभाविक था। 19वीं सदी के शुरू में ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने हिगिंस के तरंग सिद्धांत को फिर से जिंदा किया। बाद में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑगस्टिन फेरनेल ने इसे पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दिया और 20वीं सदी आने तक तरंग सिद्धांत कण सिद्धांत पर हावी हो गया। मैक्स प्लांक की गलती। प्रकाश को तरंग मानने बताने का आधार एक सीधा सा प्रयोग है। कल्पना कीजिए कि एक तालाब में पत्थर गिरने से जो वृत्ताकार तरंगे उठती हैं, उनकी राह में एक दीवार है और उस दीवार में दो छेद हैं। तरंग इस दीवार से टकराएगी और फिर छेदों के पार के जल में दो अलग अलग तरंगे पैदा होंगी। ये तरंगे फैलेंगी और एक दूसरे को काटेंगी। तरंगों की यह दखल कुछ नए प्रभाव पैदा करेगी। जहां एक तरंग का उन्नत भाग दूसरी तरंग के अवनत भाग से भिड़ेगा, वहां ये एक दूसरे को रद्द कर देंगे और जहां दोनों के उन्नत भाग मिलेंगे, वहां उनका जोर बढ़ जाएगा। वह आपसी दखल एक नई तरह का पैटर्न बनाएगा। यह पैटर्न तरंगों की विशेषता है। यही प्रयोग अगर प्रकाश के साथ किया जाए और पीछे एक स्क्रीन पर इसके असर को देखा जाए, तो वहां हमें उजले और धुंधले धब्बों की एक श्रृंखला दिखाई देगी। यह प्रकाश के तरंगत्व के कारण है। अगर प्रकाश कण होता तो हमें सिर्फ दो उजले धब्बे दिखाई देते। 19वीं सदी के आखिरी दिनों में परमाणुओं की तलाश पर काम चल रहा था। तब वैज्ञानिकों ने पाया कि तरंग सिद्धांत में कुछ कमियां हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उससे निकलने वाले विकिरण में लगातार बढ़ोतरी होती जानी चाहिए थी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा था। एक सीमा के बाद विकिरण घटने लगता था, भले ही उस पदार्थ को कितना भी गर्म क्यों न किया जाए। परमाणु और विकिरण की इस पड़ताल से क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। सन 1900 में मैक्स प्लांक ने पदार्थ से निकलने वाले इस विकिरण के गणितीय सिद्धांत पेश करने में बोल्ट्जमान के ताप गतिकीय यानी थर्मोडायनेमिक समीकरणों का सहारा लिया। बोल्ट्जमान के इन समीकरणों में ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समीकरण हल किया जाता है। अंत में टुकड़ों को जोड़कर कुल ऊर्जा निकाल ली जाती है। प्लांक को इन समीकरणों में महारत हासिल नहीं थी। वह अभी आधे में ही था कि उसे लगा कि जिस फार्मूले की उसे तलाश है वह यही है। उसने अपना गणित वहीं पर रोक दिया। यह एक अक्षम्य गलती थी। क्लासिकल भौतिकी में इसके लिए कोई आधार नहीं था। प्लांक के क्वांटा यानी गणित की चालाकी। अब प्लांक के पास ऊर्जा के टुकड़े बच गए थे। इनका क्या किया जाए? प्लांक ने कहा कि ऊर्जा को परमाणु लेता और छोड़ता एक निश्चित मात्रा में है। उसने ऊर्जा के इन पैकेटों को क्वांटा कहा। ऊर्जा को मनचाही मात्रा में नहीं, इन निश्चित मात्राओं में ही बांटा जा सकता है। यह वैसे ही है जैसे भारत में सारा लेन देन 5 पैसे या उसके गुणकों में ही संभव है। 5 पैसे से कम मुद्रा भी हो सकती है, लेकिन व्यवहार में वह नहीं है। अभी भी प्लांक के इन क्वांटा के लिए भौतिकी में जगह नहीं थी। ये सिर्फ गणित की चालाकी लगते थे। अलबत्ता इनसे ठीक ठाक काम चल जाता था। क्वांटम को प्रतिष्ठित करने का श्रेय उस वैज्ञानिक को जाता है जो बाद में क्वांटम फिजिक्स की मुखालफत करता रहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत को सभी तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरणों पर लागू कर दिया। प्रकाश या कोई भी विकिरण जब छोटे छोटे कणों की धारा थी। बाद में इन्हें फोटोन कहा जाने लगा। तरंग और कण का यह विवाद क्वांटम फिजिक्स का केंद्रीय सवाल है। इस पर हम फिर लौटेंगे। फिलहाल एक दूसरे पहलू पर नजर डालें, रेडियो एक्टिविटी का रहस्यमय पहलू। सन 1896 में हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जिसके तहत कुछ खास परमाणु टूटकर दूसरे किस्म के परमाणुओं में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे विकिरण छोड़ते हैं। यह विकिरण उनके इलेक्ट्रॉन या नाभिक के अंश होते हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा में बांटा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की रहस्यमय पहलू यह है कि इसका कोई कारण नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ को आप गर्म करें या ठंडा, उसकी रेडियो एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि आप कभी नहीं जान सकते कि कोई एक परमाणु किस समय टूटेगा। इसका न कोई बाहरी कारण है और न कोई टाइम टेबल। अलबत्ता रेडियो एक्टिव कणों के ढेर के बारे में आप औसत भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस ढेर में से आधे परमाणु एक निश्चित समय में विघटित हो जाएंगे, बाकी बचे परमाणुओं में से ठीक आधे फिर उतने ही समय में विघटित होंगे। यह क्रम चलता रहेगा। इस निश्चित समयावधि को रेडियो एक्टिव कणों का अर्धजीवन या हाफ लाइफ कहते हैं। रेडियम की हाफ लाइफ 1600 वर्ष है, कार्बन 14 की 6000 वर्ष और पोटेशियम की 13000 लाख वर्ष। जब हमारा पाला परमाणुओं की इस विचित्रता से पड़ता है तो हमें संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी के गणित का सहारा लेना पड़ता है। हम नहीं कह सकते कि फला परमाणु अब क्या करेगा, हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद यह हमारे ज्ञान की कमी की वजह से है। भविष्य में हमें रेडियो एक्टिव विघटन का कारण पता चल जाएगा, यह सोचना उनकी भूल थी। आइंस्टाइन ने पता लगाया कि जो बात रेडियो एक्टिविटी पर लागू होती है वही परमाणुओं के अंदर की हलचल पर भी लागू होती है। नाभिक के इर्द गिर्द घूमते इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ऊपरी स्तरों पर चले जाते हैं और फिर वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हुए निचले स्तर पर गिर पड़ते हैं। आइंस्टाइन ने बोल्ट्ज़मान की सांख्यिकीय तकनीक और रेडियो एक्टिविटी की संभावना सारणियों का इस्तेमाल किया, यह बताने के लिए कि किसी इलेक्ट्रॉन के स्तर पर परिवर्तन की संभावना कितनी हो सकती है। उस समय के दूसरे विद्वानों की तरह आइंस्टीन भी सोच रहे थे कि ये सांख्यिकीय सारणियां हमारे अज्ञान की मजबूरी हैं। भविष्य में इनकी जरूरत नहीं रहेगी और हम बता सकेंगे कि परमाणु के अंदर यह हलचल ठीक इसी समय क्यों हुई, किसी और समय क्यों नहीं। लेकिन ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई निश्चितता वह नहीं है। बाकी साइंस से अलग है क्वांटम फिजिक्स। यह वह मान्यता है जो क्वांटम फिजिक्स को अब तक के तमाम विज्ञान से जुदा कर देती है। यह खोज उस जगत दृष्टि को खारिज कर देती है जो कहती थी कि हर कार्य अपने से पहले के किसी कार्य पर आधारित है और कार्य कारण का यह संबंध सृष्टि के आदि से अंत तक तय है। क्वांटम फिजिक्स में यह कार्य कारण संबंध टूट रहा है। निर्दिष्टता के स्थान पर वहां ऐसे कार्य हो रहे हैं जो अकस्मात हैं, जिनका कोई कारण नहीं। इलेक्ट्रॉन और परमाणु यहां शुद्ध मनमर्जी से विचरण कर रहे हैं, उनकी कोई दिशा नहीं है न समय, वे बेतरतीब हैं। अगर कोई विराट मानस सारे अणुओं की गणना करने की कुवत रखता भी हो तो वह उससे कोई भविष्य दर्शन नहीं कर सकता। हम सिर्फ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए निचला स्तर ज्यादा संभाव्य है, लेकिन वह कब और क्यों वहां पहुंचेगा यह उसी पर निर्भर करता है। हम मानो जिस स्तर पर जीवन जीते हैं वह वृहत जगत यानी मैक्रोकॉज्म है। यहां हम कारण कार्य संबंध को सख्ती से लागू होता पाते हैं। हमारी नजरों से अदृश्य एक मामूली परमाणु के इन फितूरों का हमारे इस वृहत जगत पर कोई असर पड़ता नहीं दिखता। कारण कार्य संबंध का यह स्वरूप हमारे इस जगत की विशेषता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में हम इसे टूटता देखते हैं। अंततः हम भी इन्हीं बेतरतीब परमाणुओं से बने हुए हैं और हमारे अंदर भी परमाणुओं की यह बेतरतीबी अविश्वसनीय परिवर्तन कर सकती है। शायद हमारे मस्तिष्क के न्यूरोनों में यह क्वांटम फैक्टर भारी फर्क डाल सकता है। हमारे अंदर डीएनए के स्तर पर इन प्रभावों के विलक्षण असर हो सकते हैं और ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में जब परमाणु बन रहे होंगे तब क्वांटम फैक्टर ब्रह्मांड का स्वरूप बदल रहे होंगे।